हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं जानता हूँ प्रीति, तुम्हें मुझसे बहुत नाराजगी है। शायद तुम और आयुष्मान मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते होगे। और अगर ऐसा है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि गलती तो मेरी ही है। मैं जानता हूँ कि अपनी बेवजह की नफरत में अंधा होकर मैं ऐसा गुनाह कर बैठने वाला था जिसकी कोई माफ़ी नहीं। फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे दोनों के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ। गुरमीत के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव को देखकर आयुष्मान और प्रीति दोनों ही चौंक गए और अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखने लगे। वहीं गुरमीत ने आयुष्मान को देखते हुए आगे की बात कही। जब से होश संभाला है तब से यही सुना है कि आयुष ने मुझसे मेरा हक छीन लिया, पर कभी असलियत के बारे में सोचा ही नहीं। जब प्रीति ने सच बताया तब एहसास हुआ कि दरअसल आयुष ने तो कभी कुछ छीना ही नहीं। असल में तो हम ही उसके लालच में उसे सब कुछ छीनते आ रहे थे और उसे ही इल्ज़ाम देकर उससे नफ़रत करते आ रहे थे। एहसास हुआ कि इस फजूल और बेवजह नफ़रत ने कैसे सारे रिश्ते बिखेर के रख दिए। मैं पहले आयुष्मान से बहुत नफ़रत करता था, पर अब मेरी आंखों से नफ़रत की पट्टी हट चुकी है। जिस ज़मीन जायदाद की वजह से इस दुश्मनी की नींव रखी गई थी, मैं वो सब कुछ छोड़ देता हूँ। अब मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहा हूँ। उसके इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं वहाँ उसका इलाज करवा कर सारा रहन सहन का इंतज़ाम करके वहीं सेटल हो जाऊँगा। मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा, इसीलिए जानता हूँ पहले तुम्हारे दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे गुनाह शायद माफ़ी के लायक नहीं, पर जो हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे किए गुनाहों की सज़ा जसमीत को ना दो और ये दुश्मनी और नाराज़गी यहीं ख़त्म कर दो। गुरमीत ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए, फिर एक पल ठहरने के बाद आगे बोला, अब हम चलते हैं। बस माफ़ी मांगने के लिए यहाँ तक आया था। माफ़ी मांग ली है मैंने। माफ़ करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज के बाद मेरी वजह से न तुम्हें न ही तुम्हारे बच्चों को कोई भी ख़तरा नहीं होगा। मैं आज इस दुश्मनी को यहीं ख़त्म करके जा रहा हूँ। गुरमीत ने अपनी बात पूरी की। फिर आयुष्मान और प्रीति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के बाद जसमीत के साथ वहाँ से निकल गया। प्रीति और आयुष्मान उसकी सच्चाई और पछतावा उसकी आंखों में देख चुके थे, फिर भी इतना आसान नहीं था उनके लिए उसे माफ़ करना। दोनों चाहकर भी कुछ कह ना सके। गुरमीत की बातों से वे शौक से खड़े रह गए थे। यहाँ गुरमीत निकला और आंटी ने अपार्टमेंट में कदम रखा। प्रीति और आयुष्मान ने खुद को संभालते हुए उन्हें ग्रीट किया। आंटी ने पहले बच्चे को गोद में लेकर खूब दुलारा, उसे पहली बार देखने के नाते में पैसे भी दिए, फिर प्रीति से बातों में लग गईं। आयुष्मान के दिमाग में गुरमीत की बातें घूम रही थीं। वो वहाँ से निकलकर कमरे में आ गया, साथ में दादी भी आईं। दादी, गुरमीत क्या कहकर गया? वो जसमीत के साथ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो रहा है। चाचा चाची गुंजन और नूर का क्या होगा? कमरे में आते ही आयुष्मान के सवाल शुरू हो गए। दादी के चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, तुम बहू और बच्चे को लेकर तो वहाँ से आ गए, पर तुम्हारे जाने के बाद वहाँ बहुत कुछ हुआ। प्रीति बहू की बात सुनकर गुरमीत बहुत गुस्से में आ गया था। फिर उसे ऐसी बात का एहसास हुआ कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया, पर जो कुछ उसने किया उसमें पूरी गलती उसकी नहीं थी। तुम्हारी परवरिश तो तुम्हारे मामा मामी ने बहुत अच्छी की, यही वजह है कि तुम आज एक अच्छा इंसान बने हो। पर गुरमीत को तो बचपन में ही उसके माता पिता ने बस तुम्हारे खिलाफ नफरत सिखाई। उसने वही किया जो उसे सिखाया गया, पर तुम्हारे चले जाने के बाद गुरमीत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तुम्हारे, प्रीति बहू और तुम्हारे बच्चे के साथ कितना गलत किया। गुरमीत ने अपने माता पिता को बहुत कुछ सुनाया और फिर फैसला कर लिया कि वो उस घर में नहीं रहेगा जहाँ प्यार मोहब्बत की जगह दिलों में नफरत भर दी गई हो। जसमीत बहू को तुम्हारी चाची ने बच्चे के लिए बहुत परेशान किया, इसीलिए गुरमीत ने फैसला कर लिया कि वो जसमीत को लेकर कनाडा चला जाएगा। वहाँ एक डॉक्टर है जिसको जसमीत को दिखाना है और गुरमीत का एक दोस्त भी वहाँ है, सो वो अब वहीं रहेंगे। सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर गुरमीत ने अपना मन बना लिया है और आज ही वो कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं। दादी ने सारी बात संक्षेप में आयुष्मान को बता दी। आयुष्मान सब जानकर थोड़ा हैरान भी हुआ, पर फिर उसने इस मामले में कुछ न कहना ही ठीक समझा। वो तो वैसे ही उस घर से सभी रिश्ते तोड़ाया था, तो अब उस घर में क्या होता है और क्या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहता था। उसने बस सर हिला दिया। ये जानकर कि गुरमीत को अपनी गलती का एहसास है, आयुष्मान की नाराज़गी उसके प्रति कुछ कम जरूर हुई थी, पर अब भी वो चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? अगर उसने उसे चोट पहुंचाई तो भूल जाता सब और माफ़ कर देता उसे, पर गुरमीत ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उनके बच्चे को निशाना बनाया था जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकता था। अगर जसमीत ने उसे बच्चे को न लिया होता और गुरमीत ने अपनी जलन, गुस्सा और नाराजगी में बच्चे को नीचे फेंक दिया होता तो क्या होता, इसकी कल्पना तक से उसकी रूह कांप उठी थी। आयुष्मान पलटकर कुछ कह न सका और दादी खामोशी से उसे देखते हुए कुछ सोचती रही। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और गंभीरता से सवाल किया, आयुष तुम ये क्यों कहा था कि प्रीति बहू के बच्चे के पिता तुम नहीं हो, कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं? दादी का सवाल सुनकर आयुष्मान एक पल को चौंक गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि जो वो अमृतसर में कहकर आया था ये सवाल तो उठना ही था। गलती उससे हुई थी और अपनी गलती को सुधारने के लिए भी वो पूरी तरह से सच था। आयुष्मान ने नस्लें घुमाकर उन्हें देखा और गंभीरता से बोला, उस वक्त गुरमीत से बच्चे को लेने के लिए मेरे दिमाग में यही आया। मुझे लगा कि अगर मैंने उस बच्चे को अपना कहने से इनकार कर दिया तो गुरमीत ऐसे कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मैं तब झूठ कह दिया ताकि गुरमीत का ध्यान भटकाकर बच्चे को उससे सही सलामत वापस ले सकूं। आयुष्मान के झूठ पर दादी ने बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया। कुछ देर दोनों यहीं रुके, फिर बाहर चले आए। आंटी थोड़ी देर बाद वापस चली गईं। डिनर के बाद आयुष्मान ने दादी को आराम करने कमरे में भेज दिया और खुद किचन में काम करने चला गया। सोते वक्त भी आयुष्मान और प्रीति की गुरमीत के बारे में कोई बात नहीं हुई। रोज की तरह आज की रात भी उनकी सोते जागते हुए बीती। जितनी देर बच्चा सोता दोनों सोते, और वो जागता तो क्वैक क्वैक करके उन दोनों को भी जगा देता। यूं ही दिन गुजरने लगे। 13वें दिन घर में छोटी सी पूजा रखी गई थी। गरिमा जी वर्षा और उसके बच्चे के साथ रुकी हुई थी। मानसी और अवधेश जी आए थे। प्रीति के घर से बस राजेश ही आया था। घर में छोटी सी पूजा रखी गई थी जिसके लिए प्रसाद खुद प्रीति ने तैयार किया था और इसके साथ अब वो किचन का काम कर सकती थी। पूजा में मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, रौनक, अंकल आंटी के साथ आस पड़ोस के फ्लैट के लोग भी आए थे। आयुष्मान के कुछ कलीग्स भी आए हुए थे। मानसी ने बड़े ही प्यार से उस नन्हे राजकुमार का नाम अर्शिक रखा था, जो सबको खूब पसंद आया। अर्श को खिलौने, कपड़े और पैसे भी मिले। आयुष्मान की तरफ से सबका खाना पीना हुआ। फिर सब अपने अपने घर लौट गए। अवधेश जी और मानसी भी शाम तक वापस चले गए और रह गए बस प्रीति, आयुष्मान, उनका बेटा अर्श और दादी। सारे दिन के थके हारे आज सभी जल्दी ही सोने चले गए।